गलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते हैं अरहंताहि नमः। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है कैसी शुद्धात्म में निरत नित्य ही तो देशी हे पाप ग्रीष्म ऋतु में चल हे सयानी सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं ते सतत केवल ज्ञान पाने।
बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर बहुत प्रकार से निरंतर विचार कर रहे हैं। श्रद्धा और आत्मज्ञान उत्पन्न होने के बाद हमारे आचरण में परिवर्तन आना चाहिए। हमें अपने आचरण में परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। श्रद्धा और आत्मज्ञान ये दोनों हमें इस बात के लिए प्रेरित करते हैं कि अब हम अपने अंदर की शेष कषायों को भी क्रम क्रम से समाप्त करें। जितनी कषायें मंद होती चली जाती हैं परिणामों में उतनी ही विशुद्धि बढ़ती है, और परिणाम जितने विशुद्ध होते हैं उतना ही हमारा आचरण भी निर्मल होता जाता है। जैन दर्शन में जो परिणामों की निर्मलता है वही आचरण है। बाह्य में जो हम धार्मिक क्रियाएं करते हैं वे भी अपने अंतरंग के परिणामों को निर्मल बनाने के लिए ही हैं। दोनों स्थितियां एक साथ होनी चाहिए। एक तरफ हमारे परिणाम निर्मल हो और दूसरी तरफ हमारे बाह्य क्रियाओं में अहिंसा, सत्य, अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य ये क्रमशः आते चले जाएं। यह कि हम बाहर में अहिंसा, सत्य इत्यादि का पालन करें तो हमारे भीतर भी परिणामों में निर्मलता आती चली जाए। ये दोनों कैसे एक साथ हो हमें इस पर विचार करना चाहिए। अधिक जोर परिणामों की निर्मलता का है बाह्य आचरण की अपेक्षा से। दृष्टि की निर्मलता हमारे अज्ञान को हटाती है और हमारी आसक्ति को हमारे परिणामों की निर्मलता घटाती है। संसार के दो ही कारण हैं, अज्ञान और आसक्ति, और उन दोनों से यदि हम बच जाते हैं तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बन सकता है, हम बहुत ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। हम अपने परिणामों को कैसे निर्मल बनाएं तो बाहर में आचार्य भगवंतों ने लिखा, हिंसा रत चौरेभ्यो मैथुन सेवा परिग्रहाभ्याम च पाप प्रणालिकाभ्यो वृत्ति संगस्य चारित्रम। बाह्य में हम अपने आचरण को परिवर्तित करें तो कैसे करें? इन हिंसा, झूठ, चोरी इत्यादि पापों से जो कि संसार बढ़ाने वाले हैं उनसे हम विरक्त हों। भीतर में इन पापों के प्रति विरक्ति का भाव आने पर परिणाम निर्मल होंगे, या ये कहें कि जैसे जैसे परिणाम निर्मल होंगे वैसे वैसे बाह्य में हमारे अंदर पापों से विरक्ति होती चली जाए। ये कसौटी है भैया, हमारे परिणाम निर्मल हैं तो बाह्य में हमें पापों से उदासीनता और विरक्ति आए बिना नहीं रहेगी, और अगर बाहर से हम पापों से विरक्त हो रहे हैं तो हमारा दायित्व है कि अंतरंग में हमारे परिणाम भी विशुद्ध होना चाहिए, वरना वो जो बाह्य में हमने पापों से विरक्त होने का संकल्प लिया है, उनसे बचने का जो हमने संकल्प लिया है, वो हमारे जीवन को ज्यादा लाभ नहीं दे पाएगा यदि उसके माध्यम से हमारे परिणाम निर्मल नहीं होते। इस पर हम विचार करें, हिंसा हमारे जीवन में कितने रूपों में प्रवेश कर सकती है। हिंसा के बहुत से रूप हैं, हम कई बार वास्तव में देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति हिंसा करने के लिए हिंसा नहीं करता, वो अपनी किसी आंतरिक लोभ लालसा के वशीभूत होकर के हिंसा करता है। हम देखें कि हमारे अपने अंतरंग के परिणामों की कलुषता के द्वारा कैसे हम और हिंसा इत्यादि में प्रवृत्त हो जाते हैं। अहिंसा और हिंसा के बारे में विशेष रूप से अमृतचंद्राचार्य महाराज ने अपने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में बहुत विस्तार से वर्णन किया है। हम सब जानते हैं कि जब हम इरादा करके किसी जीव को मारूं इस तरह का विचार या भाव करते हैं, तो वो जो इंटेंशनली हमारे मन में दूसरे के पीड़ा पहुंचाने का भाव है, उसके मारने का भाव है, वो संकल्पी हिंसा कहलाती है। और जो घर गृहस्थी में हम अपना जीवन यापन करने के लिए जो ग्रह के कार्य करते हैं, उन सब में भी हमारे द्वारा हिंसा होती है, वो सब आरंभी हिंसा कहलाती है। अपनी आजीविका के लिए धनोपार्जन करते हैं, उसमें जो हमारे द्वारा हिंसा होती है वो उद्योगी हिंसा है। अपनी अपने धर्म की और अपने देश की रक्षा के लिए कदाचित हम कभी आत्मरक्षा की दृष्टि से अस्त्र शस्त्र इत्यादि का प्रयोग भी करते हैं, जिससे दूसरे का विघात हो सकता है, तब ऐसी जो हिंसा है वो विरोधी हिंसा कहलाती है। ये सब परिचित हैं इस चीज से, लेकिन विशेष बात जो जानने की है वो ये है कि कैसे हमारे परिणामों के द्वारा और ये क्रिया जो बाहर में देखने में आती है वो कैसे संपन्न हो जाती हमसे हमारे अपने परिणामों की कलुषता से, क्योंकि परिणामों की निर्मलता जिसके है उसके ये सब क्रियाएं संभव ही नहीं। अगर होती हैं तो कहीं ना कहीं परिणामों में कलुषता आई है, इसलिए हमारे द्वारा ये बाह्य में हमारे आचरण में ये चीज देखने में आती है। लिखा है आचार्य भगवंतों ने कि कभी कभी देखने में ये आता है कि कर्ता कोई और है, और कहते कि एक तो कर्ता है लेकिन भोगते अनेक। बाहर में देखने में तो ये आता है कि एक व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उसका फल बहुत लोगों को भोगना पड़ता है। क्यों? हमारे अपने परिणामों की वजह से। अपन कभी कभी कोई खेल तमाशा दिखाने वाला आ जाता है तो हुजूम लगा करके खड़े हो जाते हैं देखने के लिए। तीतर को लड़वाने वाला आता है या बंदर का कोई खेल दिखाने वाला आता है, हम चारों तरफ हुजूम बना के खड़े हो जाते हैं। वो तो आपस में लड़वा करके और हमारा इंटरटेन कर रहा है दो पैसे के लिए, लेकिन हम उस कार्य में सम्मिलित हो गए। कर रहा है एक लेकिन भोगना पड़ेगा, जितने खड़े हुए हैं उन सबको, क्योंकि उन सब के परिणाम उस क्रिया में कलुषित हुए हैं। यह सावधानी रखना पड़ेगी कि हमने तो सोचा था कि हमने तो हिंसा की नहीं, हमने तो किसी को तमाचा तक नहीं मारा, हमने तो किसी को कुछ किया ही नहीं उसका अहित, लेकिन ऐसे हम सहज भाव से अहित कर लेते हैं। जब कहीं कोई चीज इस तरह की हो रही हो, ये सब निष्क्रिय पाप कहलाता है। सक्रिय हिंसा तो बहुत कम करते हैं, निष्क्रिय प्रकार की हिंसा में हम बहुत शामिल हो जाते हैं। किसी का कुछ भी शुभ अहित हुआ और उसमें हम शामिल हो गए, ये जो सामूहिक पाप है वो हमारे द्वारा निरंतर होता रहता, क्योंकि हमारे परिणाम उस स्थिति में कलुषित होते हैं। जैसे कि सिनेमा में जाकर के हम कोई दृश्य देख रहे हैं जिसमें कि मार तो एक व्यक्ति रहा है, लेकिन सब उस मारने वाले दृश्य को देख रहे हैं, सब उसमें शामिल हो गए हैं, सब उसके भागीदार बन। अच्छा किया, और ऐसे नहीं ऐसे करो, हाँ अब ये ऐसे करेगा तो ये ऐसे मर जाएगा, ऐसा भाव मन के भीतर आ रहा, उसमें सब शामिल हो गए, वो सब जो है अपना मन कलुषित करने से हिंसा के भागीदार हो जाते। करता है एक और भागीदार इतने होते हैं, तब इसका फल भी मिलता है सामूहिक पाप के रूप में, तब पूरी की पूरी बस डूब गई, गिर गई, एक्सीडेंट हो गया। ये क्या चीज है, ये सबके पास सामूहिक पाप का उदय आ गया, जो सामूहिक पाप किया था उसका। बहुत सावधानी की आवश्यकता है कि जब हम अहिंसा के बारे में विचार करें तो अपने द्वारा होने वाली हिंसा से सावधान रहें। हो सकती है इस तरह से भी हिंसा हो सकती है, इतना ही नहीं कहते करें अनेक और भोगना पड़ता एक को, बड़ी अजीब सी बात लगती है, ये बहुत भावनात्मक है। बाहर से करने वाले अनेक दिखाई पड़ते हैं लेकिन भोगना पड़ता है एक को अधिक मात्रा में। कैसे, सबने की होगी अपनी अपनी शादी विवाह, जिन जिन की हो गई उनकी कह रहे जो तैयारी में है बेबी विचार कर ले, हाँ। क्या होता उसमें, अब तो एक दिन में हो जाती, घंटे दो घंटे में, पहले तीन दिन तक जो है दूल्हे राजा बने बैठे रहते थे और कोई काम नहीं करते, दूल्हे राजा बैठे हैं, ये हो गया ये हो गया, पंडाल लग गया है, सब शोभा हो गई है, भोजन वालों के लिए भोजन की व्यवस्था, मेरे मिलने वाले मित्र आएंगे उनके लिए कहाँ रुकवाओगे, सब प्लानिंग। कितने लोग लगे हैं करने वाले, सैकड़ों लोग लगे हुए हैं, लेकिन उन सब का इंटरटेन कौन कर रहा है, उस सब का आनंद कौन ले रहा है, एक। तो सबसे ज्यादा फल किसको मिलेगा उस सब पूरे कार्य का, एक को। ये सावधानी रखना, ऐसे हम बहुत अपने परिणाम कलुषित कर लेते हैं, उन सब क्रियाएं जो हम करने के लिए दूसरे को, जो हमारे लिए हो रही हैं, उन सब की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर, अगर हम उसको एंजॉय करते हैं तब, ये ध्यान रखना। और वो दूल्हा तो एंजॉय ही करता है कि मेरे लिए हो रहा है ये सब, और आनंद लेता है कि वाह। तो देखिएगा, करता करते अनेक हैं लेकिन भोगता एक है। और मजा देखो, बाहर से किया जाए कमती और फल भोगना पड़े ज्यादा, और बाहर से किया जाए ज्यादा और भोगना पड़े फल कमती, दोनों ही चीजें हो सकती। सारा भावनात्मक है, इसी वजह से हिंसा और अहिंसा का जो अपने यहाँ पर गणित है वो बहुत भावनात्मक है। हम लोग तो सिर्फ ये सोच करके कि अरे देख के चलो चींटी पे पांव ने पड़ जावे, बहुत अच्छा, लेकिन भावों में कलुषता कितनी आ गई इसका ध्यान नहीं रहता। कितने मौके पर सुबह से शाम तक और हमारे भावों में परिणामों में कितनी कलुषता बनी रहती है, वो सब हमारे लिए उसका फल भोगना पड़ेगा, वो सब हिंसा ही है। राग द्वेष योर हिंसा, जितने हमारे राग द्वेष से कलुषित परिणाम हैं, वो सब हिंसा जनित पाप से हमें लिप्त करने वाले हैं। और जितनी वीतरागता और साम्य भाव है, वास्तव में वही कर्मों की निर्जरा का उपाय है, अपने जीवन को निर्मल बनाने का वही एकमात्र उपाय है। कैसे इसको विचार करें कि करते तो ज्यादा हैं और फल भोगना पड़ता है कमती। सबके जीवन में ये उदाहरण आता है, ध्यान नहीं जाता अपना, अब वैसे ध्यान भी कैसे जावे, पहले तो चूल्हा जलता था घर में रोटी बनने के लिए हैं, तो अपन ने थोड़ो बहुत कहूं चौका में उपद्रव करो या भीतर उनकी जो बाउंड्री बनी है उसके भीतर घुसने लगे तो माँ क्या कहती थी, सीधे बैठो, अपन नहीं बैठे तो निकारे हम, अब निकारे हम समझ गए सब जले, तो वो निकालती भी थी धीरे से, उसको बाहर निकालेगी जलती हुई वो लकड़ी है। अब दिखने में क्या आ रहा है कि ऐसा भाव, अरे क्या कर रहे हो, लेकिन फल कैसा मिलेगा, फल कमती मिलेगा, क्योंकि परिणामों में वो चीज नहीं है, सिर्फ भय उत्पन्न करने के लिए है, मैं इसे जलाऊं ऐसा भाव नहीं है वहां पर, वहां तो सिर्फ उसको भयभीत करने का भाव है, नहीं तो मां को तो फिर बहुत ज्यादा कर्मों का बंद हो जाएगा, उसको तो कदम कदम पे करना पड़ता, वहां पर परोपकार की भावना है बेटे के प्रति, उसको सुधारने के लिए वो इस तरह, दोष है लेकिन कहते कि बाहर में दिख रहा है ज्यादा, और वैसे अगर कोई लकड़ी जलती हुई किसी को लगाने के लिए ले जावे तो, लेकिन वहां इसमें और इसमें दोनों में क्रिया में एक जैसा हो सकता है लेकिन भावों में बहुत अंतर है, इसलिए कहते कि करे ज्यादा लेकिन भोगना पड़ेगा फल कमती, लेकिन कई बार करते हैं कमती और फल भोगना पड़ता है ज्यादा, ऐसा कठोर वचन कह दिया कि उस कठोर वचन को सुन करके और भीतर मर्म भेदी चोट पहुंच गई और अपने जीवन को ही नष्ट कर सकता है कोई व्यक्ति, आपके यहीं समीप में गुना की घटना है, हाँ नाम नहीं जानता मैं, मुझे मालूम भी नहीं, लेकिन मेरे चतुर्मास में 94 में घटित हुई थी, मेरे चतुर्मास के कुछ ही दिन पहले 10-15 दिन पहले, याद है दूसरे ही दिन, हाँ और याद आ गया मैं, कैसे कि करे कमती फल भोगना पड़ेगा ज्यादा, एक इंजीनियरिंग कंप्लीट करके आर्किटेक्ट में और बहुत अच्छा स्टूडेंट, ब्रिलियंट, बहुत बहुत होशियार, और मालूम पड़ा कि उसने अपना जीवन आत्मघात करके नष्ट कर दिया, हुआ क्या था किसी को नहीं मालूम, इतना बढ़िया परिवार, सारी बातें बहुत अच्छी, सब दुखी हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसा किसने क्या कह दिया, क्या कर दिया, मैं भी खोजबीन में रहा कि ऐसा हो कैसे सकता है, किसी को भी नहीं सूझ रहा कि क्या हो सकता है, 4 महीने व्यतीत हो गए और उनके जो मित्र थे उनसे एक बात मुझे सुनने में आई, कहीं कोई मिस्टेक नहीं थी, सब कुछ बढ़िया था, किसी को दोष नहीं दे सकते, और समझ में भी नहीं आया कि आखिर कारण क्या हुआ कि उसने अपने जीवन से निराश होकर के और जीवन ही समाप्त कर लिया, बात जरा सी थी, उनके मित्रों ने कहा कि एक दिन वो अपने आत्मघात से पहले ये कहते हुए पाया गया था कि घर में मेरा कोई नहीं है, ऐसा भाव कैसे आया, बात ये थी कि जैसे इंजीनियरिंग करके आया तो उसके पिता ने कहा कि बेटे अब तो तुम स्वयं ही अपने घर का प्लान करो, अपने को किस तरह से घर डिजाइन करना है, नया बनवाना है, और उसने मैप बनाया, डिजाइन किया और बताया पिता को कि ये आपका रूम ऐसा बनेगा, ये बड़े भैया का रूम ऐसा बनेगा और ये गेस्ट रूम इस तरह से बनेगा, ये किचन प्लान किया और ये सब ड्राइंग रूम प्लान किया, सब कुछ प्लान किया और पिता को दिखा रहा है, पिता बहुत प्रसन्न है, प्रशंसा कर रहे हैं, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, और किसी ने कुछ भी नहीं कहा, ना भाई ने, ना माँ ने, ना पिता ने, और वो मैप फोल्ड करके रख दिया गया, बात उसके मन में चुभ गई, जरा सी बात, किसी ने कुछ नहीं कहा लेकिन चूक हो गई, किसी ने ये नहीं पूछा और तुम्हारा कमरा इस घर में, उसने सोचा कि मैं अपने हाथ से, इतना संवेदनशील, ज्ञानवान तो था तो संवेदनशीलता तो बहुत थी, बहुत संकोच था मन में कि मैं अपने हाथ से अपना रूम कैसे ड्राइंग करूं, पिता खुद कहेंगे कि और तुम्हारा रूम, तब फिर मैं अपना डिजाइन करूंगा, इतनी छोटी सी चीज, बताइए आप, वो उसके मन को चुभ गई कि यहां कहने को मेरे माता पिता और भाई सब हैं लेकिन किसको मेरी चिंता है, किसी ने ये नहीं पूछा इस पूरे घर बनने में कि तुम्हारा कमरा तुम कहां प्लान करोगे, वो तो तुमने किए ही नहीं, इतनी छोटी सी बात जरा सी हमारी भूल, जरा सी हमारी इतनी छोटी सी बात, कितना बड़ा फल मिला उसका ये उदाहरण है मेरे सामने। मुझे आश्चर्य होता है कि हाँ सचमुच हम भी ऐसा ही अपने जीवन में कई बार चूक जाते हैं, सोचते हैं इतनी सी तो बात ही है। एक कहानी पढ़ी थी, उसमें था कि बेटे ने बाद में जब पिताजी नहीं रहे तब सबने कहा कि हुआ क्या पिताजी को, बोले किसी ने नहीं, हमने तो महीना भर से बोलवो तक बंद कर दो, तो उनसे हमने तो कुछ कही नहीं है जो उन भी मर जावे, तो जो जो आपने बोलवो बंद कर दो तो वही उनके मारवे में कारण बनो, हमने तो कुछ कही ही नहीं है। कई बार अपन ऐसा कह देते कि हम तो भैया बोले चाले तक नहीं, हमने तो उनसे बोलवो ही बंद कर दो, हमने कछु नहीं कही, और हमारी का जिम्मेदारी हो गई। सबसे बड़ी जिम्मेदारी कि आपने जो बोलना बंद कर दिया उससे परिणाम उसके व्यक्ति के, भैया कोई भी यहाँ पर अपनी उपेक्षा पसंद नहीं करता है, सबसे बड़ी हिंसा है उपेक्षा, दूसरे को उपेक्षित कर देना उसके जीवन को मानो नष्ट करने जैसा ही है। तो दिखता तो थोड़ा सा है लेकिन फल मिलेगा बहुत ज्यादा। हिंसा के इतने रूप हैं, दिखाई नहीं पड़ती ऐसी प्रकट में, कौन कौन को मारता आज कोई नहीं, लेकिन भीतर के परिणामों की कलुषता से हम निरंतर जो है हिंसा के भाव से लिप्त बने रहते हैं और अपने जीवन को और पतन की तरफ ले जाते। बहुत सावधानी की आवश्यकता है। कह रहे कि करे समान लेकिन भोगे फल अलग अलग, ये तो बहुत स्पष्ट सही है कि सब लोग को मालूम है कि एक जैसा कार्य करते हैं लेकिन फल अलग अलग भोगना पड़ता है। लोग पूजा करने 100 लोग खड़े हुए हैं, वे 100 लोग सब एक जैसे भाव से पूजा नहीं कर रहे हैं, सबके अलग अलग भाव हैं, सबको अलग अलग फल मिलेगा। ठीक इसी तरह से जैसे कि शुभ फल है वैसे ही अशुभ है। एक माँ भोजन बना रही है, क्या विचार कर रही कि इसको बनाने से सबका अच्छा होगा, सब इस भोजन को करके और अपना धर्म ध्यान करेंगे, एक भाव ये है। और दूसरी माँ भी भोजन बना रही, वही क्रिया कर रही, लेकिन ये सोच करके कि हमारे मत्थे जा सब आई है, जिंदगी यही में निकर जे हमारी, कौन कौन को कबे कबे तक बना बना के ख्वात रहे, हमारा का भाव कछु तो नहीं जीवन में, तो पढ़ो लिखो का काम में आओ, हमारे सब बेकार हो। एक ये भाव, जैसा भाव होगा कर्म एक सा दिखाई पड़ता है लेकिन जैसा भाव होगा वैसा फल मिलेगा। इतना ही नहीं, करे बाद में फल पहले भोगना पड़ेगा, आश्चर्य लगेगा। करे बाद में फल पहले भोगना पड़ेगा। बहुत सीधी सी चीज है कि कभी कभी हम किसी व्यक्ति का बुरा करने का प्लान करते रहते हैं और बुरा नहीं कर पाते। देखो वर्षों लग गए कि किसी व्यक्ति का मैं ऐसे ऐसे करके और उसका अहित करूंगा, और वर्षों प्लान करते रहे और उस प्लानिंग करने में अशुभ परिणामों से और कर्म बंधते रहे, और इससे पहले कि उसका आहित कर पाए स्वयं का जीवन पूरा हो गया और वे जो कर्म बंधे हैं उनका फल मिलना शुरू हो गया, उस व्यक्ति का कोई बिगाड़ ही नहीं कर पाया, उसके पहले मरण को प्राप्त होकर के और दूसरे जीवन में जाकर उन कर्मों का उदय भोगते हुए और तकलीफ उठाने लगे, दूसरे को दुख देने का विचार उसे दुख बाद में पहुंचा पाएगा, स्वयं हमारे जीवन को नष्ट पहले करेगा। इसलिए कहते कि करे बाद में फल भोगे पहले। हमने दूसरे को दुख देने का जो विचार किया है उससे दुख तो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पर हमारे अपने जीवन में उसका फल तो हमें, हो सकता है कि उसको दुख बाद में पहुंचे, हमें पहले उसका फल मिल जाए और फल भोगना पड़े। और आखिरी बात आपसे कहूं, कहते हैं कि करे कोई और भोगे कोई। अभी तक तो कर्म सिद्धांत में यही अपन ने सुना था कि जो करे सो वही भोगेगा। भैया इतना ही नहीं है, ऐसा तो है ही, लेकिन इससे भी एक कदम आगे है कि करे कोई और भोगे कोई। सो सबके जीवन में उदाहरण देखने में आता है कि परिवार में एक व्यक्ति खोटी आदत वाला होवे तो बाकी सबकी आंख नीची हो जाती बाहर निकलने में, हो जाती कि नहीं बोलो। घर का एक बेटा और व्यसन करे तो बाकी सबको उसका फल भोगना पड़ता कि नहीं, करे कोई और भोगे कोई, आंख नीची हो जाती। भला फल भी ऐसे ही है, तो बुरे फल की बात है। भला फल एक बच्चे को जो है और परिवार में और अच्छे नंबर आने से अवार्ड मिल जाता है तो बाकी सब भी क्या कहलाते हैं, ये वो उस बेटे के माता पिता है, इसको इतने इतने नंबर मिलेंगे, अवार्ड मिला था, प्रशंसा भी मिल रही है, कर्ता कोई है और भोक्ता कोई और है, ये इसका उदाहरण मेरे जीवन में। और बाकी तो ये उदाहरण है, लेकिन जो एक बड़ा अजीब सा उदाहरण आया वो आपसे कहूं और बात पूरी करूं। समय तो अपना हो गया, ये नहीं कहूंगा ज्यादा हो गया, समय तो अपना हो गया था। उसी समय जब हमारे पास माइक आया था 5 मिनट बचे थे, 9:30 तो जब ही बच गए थे जी, तो हमने बोनस के ले लाए। अब चुकाने पड़े, चुका दे भाई, कहूं कहूं 5-5 मिनट कम करके। तो ग्वालियर की घटना है, ऐसी घटनाएं अगर अपन थोड़ा सा अपने आसपास दृष्टि डालें तो बहुत घटित होती हैं, जो अपने जीवन को प्रेरणा दे सकती हैं कि बहुत सावधानी से अपना जीवन जीना भैया। सावधानी बाहर की अकेली नहीं, बाहर फूंक फूंक के कदम रखने वाला भी अंतरंग के परिणाम में संभालेगा तो उसके फूंक फूंक के कदम रखने का कोई ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। फूंक फूंक के कदम रखने का मतलब ये है कि भैया भीतर के परिणाम संभाले रहना और कुछ नहीं। कई लोगों को लगता होगा कि महाराज को का है, महाराज को तो फुर्सत है दिन भर का करने, भैया सो 24 घंटे कछु नोई करने, हमारे जिम्मे कोनो काम नोई है। लेकिन सबसे बड़ो काम है कि अपने परिणाम संभाले रहियो 24 घंटा, जो ही काम है और कछु काम नहीं। अगर देखा जाए तो एक ही काम है 24 घंटे का काम, कि जरा में जो है परिणाम और बिगड़ सकते हैं, वातावरण जो है चारों तरफ ऐसा फैला हुआ है। वो घटना आपको मैं सुनाऊं, मुझे किसी पत्रकार ने सुनाई थी और वो जैन नहीं थे वो, लेकिन प्रवचन सुनते होंगे। तो एक दिन आकर बोले मेरे से कि आपके लिए मैं एक बात सुनाऊं, बड़ी अजीब सी बात है। आज मेरे पास मेरे पत्र में छपने के लिए, पेपर में छापने के लिए एक घटना आई है, संवाददाता ने मुझे वो दी है, मैंने उसकी इंक्वायरी भी कर ली है, तब छापूंगा क्योंकि घटना बड़ी अजीब है। क्या हुआ भाई? कहते महाराज जो आप कहते हैं वैसा ही है, संसार की वास्तविकता हमने देख ली। आप तो अपने प्रवचन में कहते ही हो, हमने तो अपनी आंखों से देख ली। भाई हमने कहा सुनाओ तो बात क्या? कहते उसी को बताने तो आपके पास आया हूं कि एक परिवार में माता और पिता में आपस में और विवाद हो गया, और वो विवाद बढ़ता चला गया। घर में एक बेटी है, माँ है और पिता है, 3 प्राणी है कुल। और विवाद इतना बड़ा कि पिता ने अपनी बेटी और जीवन साथी को घर से बाहर धक्का देकर निकाल दिया। होता है, इतना तो होता है कि नहीं? इतना तो अनुभव आपको होगा, इसमें क्या बात? नहीं और क्या कहें आप? आप बुरा नहीं मानना, आप ये तो अपने देखने में आता, अपने अनुभव में आता, मतलब अपने देखने में आता। सब चीजें अपने अनुभव में आवे इसका मतलब ये नहीं है कि अपने जीवन में घटित भाई, अपने जीवन में देखने में आती तो अपन कहते हमारे अनुभव में आई। अब इसके बाद की जो चीज है कि ठीक है, उन दोनों को, उस बेटी को और माँ को घर से बाहर निकाल दिया है। वे अपने नाना के यहाँ जाना चाहती तो जा सकती थी, नहीं गई, बहुत स्थिति, सोचा कि जब यहीं से दुष्कार दिया तो कहाँ जाएं, तो उसी मोहल्ले में और 10-20 घर आगे पीछे जाकर के और किसी के यहाँ किराए से रहने लगी कि थोड़ा शांति हो जाएगी। कोई भी होवे कषाय कितनी चलेगी, जब परिणाम शांत होंगे सो अपने आप आ जाए, तई रहो पास में ही, वैसा सोच के वो रह गई। लेकिन इस व्यक्ति की कषाय देखो, इतनी अधिक कषाय कि उनके यहाँ पर नल की लाइन कटवा देता, कभी कभी बिजली की लाइन कटवा देता। कहते महाराज यहाँ तक तो ठीक है, सुनाने वाला कहता, लेकिन आज तो अति हो गई। अपनी ही बेटी और अपनी ही जीवन साथी पर चारित्रिक रूप से हमला करने के लिए उस व्यक्ति ने गुंडे भेजे। ये संसार की वास्तविकता जो है आज देखने में आई कि यहाँ तक कोई व्यक्ति पतित हो सकता है। अब मुझे ये बताओ कि ये तो घटना हो गई, सारा मिलेगा किसको, शे किसको जाएगा, करे कोई और भरेगा कौन? वो जिसने की ये करवाया है, जिसने उसे भेजा है पैसे देकर के कि तुम इनके जीवन को बर्बाद करो, मार दो, ऐसा नहीं इनके जीवन को बर्बाद कर दो, इसके लिए भेजा है और 1,000-5,000 रुपए देकर के भेजा है। कर रहा है कोई और भोगेगा कोई कौन? जिसने करवाया है वो भोगेगा। हम अपने जीवन में झांक के देखें कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी इस तरह बाहर से कुछ करते नहीं दिखाई पड़ते हों, लेकिन हमारे परिणामों में
मंगलमय मंगलकरण वीतराग विक्रम।